पाठ 31 अध्याय 28 और 29।
पिछले सप्ताह हमने गिनती 28 और 29 की दो अध्याय वाली इकाई शुरू की थी, जिसका शीर्षक मैंने सार्वजनिक बलिदानों का कैलेंडर रखा था। ये दो अध्याय ऐसे हैं जो लंबी और जटिल बाइबल वंशावली और जनजातीय सूचियों की तरह हमारी आंखों को झुका सकते हैं और हमारे सिर को हिला सकते हैं, क्योंकि हम जागते रहने और जो वे कहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि हमारी उदासीन और उबाऊ प्रतिक्रिया इसलिए है क्योंकि हम विषय वस्तु को हमारे लिए अप्रासंगिक मानते हैं, जो केवल प्राचीन समय के लिए है या शायद हमारे 21वीं सदी के पश्चिमी दिमाग के लिए व्यावहारिक रूप से समझ से बाहर है। मैं पश्चिमी शब्द पर जोर देता हूं क्योंकि देवताओं की सेवा में बलिदान और अनुष्ठान शायद ही बीते युगों की बात हो। वे वर्तमान में हैं और यहूदी ईसाई धर्म के अलावा दुनिया के अधिकांश अन्य धर्मों में अभी भी होते हैं।
बाइबल बलिदान को उचित उपासना प्रथाओं का केंद्र, केंद्र बिंदु और हृदय बनाती है। चर्च सही ढंग से यीशु के बलिदान को विश्वासियों की पूजा का केंद्र बिंदु बनाता है। फिर भी जब बलिदान और अनुष्ठान में हमारी अपनी भागीदारी के विषय की बात आती है तो हमारी आंखें चमक उठती हैं और हम वास्तव में यह भी नहीं जानते कि उन शब्दों का क्या अर्थ है। निश्चित रूप से मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हमें पशु बलि को फिर से शुरू करना चाहिए, हालांकि यहेजकेल के बाद के अध्याय यह स्पष्ट करते हैं कि नए मंदिर और मसीहा की वापसी के साथ ऐसा होगा। हालांकि मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि हम संभवतः ईश्वर द्वारा निर्धारित तोरह आधारित अधिकृत बलिदान प्रणाली में निहित अर्थ की असीम गहराई को समझना शुरू भी नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे वैध और अच्छा और समझने योग्य न माने। आधुनिक इब्रानी टिप्पणीकार W.G. प्लॉट ने अनुष्ठान बाइबल बलिदान के विषय के बारे में यह कहा, आधुनिक लोग इस तरह के अनुष्ठानों के बारे में आदिम क्या मानते हैं। निस्संदेह बलिदान की बाइबल से पहले की उत्पत्ति उन मान्यताओं से जुड़ी है कि देवता अपने उपभोग के लिए भोजन चाहते थे, लेकिन तोरह खुद अब इस तरह की मान्यताओं को जारी रखने के लिए कोई वारंट नहीं देता है और भजन 50 स्पष्ट रूप से उन्हें अस्वीकार करता है। सबसे अधिक संभावना है कि यह प्राचीन वध प्रक्रिया की सार्वजनिक प्रकृति है जो वर्तमान स्वाद के लिए प्रतिकूल है। हम इस प्रक्रिया को बूचर खानों की दीवारों के पीछे छिपाना पसंद करते हैं, जहां जानवरों को कम खूनी तरीके से नहीं मारा जाता है, लेकिन उपभोक्ता के लिए जीवन और मृत्यु चक्र को देखना आवश्यक नहीं है जो उसके सुखद पोषण में जाता है। इसके अलावा जब हम खाने की प्रक्रिया में दूसरों के साथ साझा करते हैं तब भी हम आमतौर पर किसी भी वास्तविक योग्य भावनाओं का अनुभव नहीं करते हैं जो आमतौर पर पुराने बलिदानों से उत्पन्न होती थी। अंग्रेजी शब्द के मूल अर्थ में हम किसी भी चीज का बलिदान नहीं करते हैं, अर्थात हम पवित्र नहीं करते हैं जब हम खाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे युग को पंथीय बलिदान के किसी भी पुनर्विचार के लिए तैयार होना चाहिए। यह सुझाव देता है कि जब अपने स्वयं के संदर्भ में देखा जाता है तो पशु बलि का बाइबल आदेश पूजा का एक वास्तविक रूप था, जिसे पूर्वाग्रही समकालीन निर्णयों के साथ जल्दी से खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ समय पहले हमारे प्रिय भाई और इसराइल के शिक्षक रब्बी बारूक ने हमें बताया कि उनका मानना है कि जब यरूशलेम में मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जो कि होगा, और जब जानवरों की बलि फिर से शुरू होगी, जो कि होगी, तो गैर यहूदी ईसाइयों के बीच काफी हद तक सार्वभौमिक विश्वास के विपरीत कि ये अनुष्ठान बलिदान यहोवा द्वारा चेहरे पर तमाचा के रूप में देखे जाएंगे, संभवतः ये बलिदान यीशु ने जो किया है उसका स्मरणोत्सव होगा। इसके अलावा ईसाइयों को इन नए बलिदानों को उद्धारकर्ता के प्रायश्चित रक्त के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं मानना चाहिए, जैसे कि हमारा फसह का उत्सव उनकी मृत्यु के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं है। हमारे लिए एक चम्मच शराब या अंगूर का रस पीना और अखमीरी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा निगलना और यह सोचना कि इसके माध्यम से हमने उनके बेजोर बलिदान, एक बलिदान जो लैव्य व्यवस्था बलिदान प्रणाली द्वारा विस्तार से पूर्व निर्धारित किया गया था, कि पूरी समझ प्राप्त कर ली है, हमारी ओर से एक बड़ी और भोली गलत गणना है, और केवल पवित्र आत्मा की बुद्धि से प्रेरित होकर 12 का हमारा परिश्रम पूर्ण अध्ययन ही हमारे लिए इसका समाधान कर सकता है।
पिछली बार मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया था जिसमें 4 सामान्य प्रकार के बलिदानों का सारांश दिया गया था, ओलाह, हत्तात, अशाम और शेलामीन। हम अध्याय 28 को पूरा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम इसका कुछ हिस्सा फिर से पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपके लिए हमारी आधुनिक पीढ़ी के लिए लैव्य व्यवस्था बलिदानों और सामान्य रूप से बाइबल के पर्वों के अंतर्निहित अर्थ और संरचना को समझने के लिए थोड़ा आसान तरीका तैयार करने की कोशिश करने जा रहा हूं। गिनती अध्याय 28 का 9 पूरा पढ़ें।
अध्याय 28 पद 1 सबसे मजबूत संभव भाषा में यह बताते हुए शुरू होता है कि परमेश्वर ने जो अनुष्ठान और बलिदान और उत्सव निर्धारित किए हैं उनका न केवल पालन किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें उनके द्वारा निर्धारित तरीके, समय और मात्रा में सटीकता और पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। विकल्प बहुत कम हैं और जब विकल्प होते हैं तो लगभग हमेशा उन गरीबों के लिए छूट देने से संबंधित होता है जो बलि के रूप में अधिक महंगे जानवरों में से एक को खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आधुनिक और आरामदेह चर्च के लिए यह आदर्श है कि गरीबों या कर्ज में डूबे लोगों को परमेश्वर को दशमांश के रूप में कुछ भी न देने की छूट दी जाए, लेकिन बलिदान प्रणाली के पैटर्न में परमेश्वर निर्धारित करते हैं कि सभी को बलिदान देना चाहिए, भले ही यह कभी कभी आवश्यक रूप से छोटा हो। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि इसराइल सदियों के वादे की दहलीज पर खड़ा है, जब वे यर्दन नदी के पूर्व में डेरा डाले हुए हैं और वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए अधीर हैं, तो उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य इसराइल के परमेश्वर के लिए सार्वजनिक पूजा का यह कैलेंडर स्थापित करना है, और यह उनके और यहोवा के बीच संचार और संवाद की दोनों लाइनें स्थापित करने के लिए हैं। इन 2 अध्यायों में हमें उन अवसरों की एक लंबी सूची मिलती है जिन पर बलिदान चढ़ाए जाने चाहिए, और इसके साथ ही बलिदानों की किस्म और गिनती भी बताई गई है। बलिदान प्रतिदिन और सप्त पर चढ़ाए जाने चाहिए, और इसके अलावा प्रत्येक वर्ष में 30 दिन ऐसे होते हैं जो विशेष अनुष्ठान बलिदान के लिए चिह्नित होते हैं। मैंने आपके लिए जो चार्ट तैयार किया है उसे देखकर आप बलिदान के इन अवसरों से जुड़ी कई विशिष्ट विशेषताएं देख सकते हैं। जैकब मिलग्रोम ने इन अंतरों को संक्षेप में बताने का शानदार काम किया है, इसलिए मैं उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ उन्हें उद्धृत करूंगा। 1, चढ़ावे संचयी हैं, अर्थात सप्त और त्योहारों के लिए चढ़ावे दैनिक प्रसाद के अतिरिक्त तथा रोष हशना नए वर्ष के लिए प्रसाद दैनिक और नए चंद्रमा के प्रसाद के अतिरिक्त है। इसलिए यदि नया वर्ष सप्त पर पड़ता है तो निम्नलिखित सभी चीजें पेश की जाएंगी, का दैनिक प्रसाद प्लस, खा सप्त प्रसाद प्लस, गे नए चंद्रमा का प्रसाद प्लस, घा नए साल का प्रसाद। 2, कैलेंडर का आयोजन सिद्धांत आवृत्ति के अवरोही क्रम के अनुसार है, प्रतिदिन, फिर सप्त और फिर नया चांद, फिर त्योहारों के लिए बलिदान कैलेंडर क्रम में आते हैं जो फसह से शुरू होता है। 3, उल्लिखित सभी बलि पशु नर पशु हैं, बैल, मेरहे और मेमने होम बलि ओलाह प्रसाद के रूप में तथा बकरे शुद्धिकरण प्रसाद हतात प्रसाद के रूप में। 4, यज्ञ का क्रम निर्देशात्मक है, वर्णनात्मक नहीं। वास्तविक व्यवहार में शुद्ध अतिरिक्त होम बलि से पहले एक भेंट चढ़ाई जाएगी। 5वीं गिनती 7 और इसके गूंज 14:7 का 2 गुना बहुत महत्वपूर्ण है। पशुओं की गिनती की पेशकश की गई। 6, गिनती 28 और 29 में बताई गई गिनती 7 की आवृत्ति के अतिरिक्त गिनती 7 के अन्य उदाहरण भी हैं, 7 बाइबल त्योहार, 7 दिवसीय अखमीरी रोटी और सुक्कोत त्योहार, 7वें महीने में होने वाले त्योहारों की प्रधानता, 7 त्योहार के दिन सप्त के अलावा जिस दिन सभी काम वर्जित होते हैं। इसके अलावा सुक्कोत के लिए आवश्यक बैलों की गिनती 70 7×10 है, सुक्कोत पर मेमनों की गिनती 7×7×2 है, मेरहों की गिनती 14 7×2 है
और आवश्यक बकरियों की गिनती 7 है।
प्रतिदिन की भेंट को हमेशा इब्रानी में तामिद कहा जाता है। पशु पुरोहित वर्ग द्वारा प्रदान किए जाते थे और पुरोहितों द्वारा होम बलि के रूप में बलि और चढ़ावा चढ़ाया जाता था। प्रतिदिन की भेंट हर सुबह और हर शाम बिना चूके तंबू और बाद में मंदिर में महान कांस्य वेदी पर चढ़ाई जाती थी और इसमें एक मेमना और एक अनाज की भेंट जिसे मिंचा कहा जाता है और शराब की एक अर्पण भेंट शामिल होती थी। इसराइलियों ने तामिद को अपने अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि जब तक तामिद का पालन किया जाता है यरूशलेम की दीवारें खड़ी रहेंगी और प्रभु उनकी रक्षा करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसा याद दिलाना चाहता हूं जो भ्रमित करने वाला हो सकता है। बलिदान के लिए सबसे आम शब्द होम बलि है, लेकिन हमें वास्तव में इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। समस्या यह है कि बहुत से लापरवाह विद्वानों ने बहुत ही विशिष्ट औलाह बलिदान को होम बेली के रूप में अनुवादित किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई प्रकार के बलिदान थे जिनमें से प्रत्येक का अपना दिव्य उद्देश्य और अपना नाम था, भले ही हर बलिदान वेदी पर जला दिया जाता है। इस प्रकार हर बलिदान को होम बलि के रूप में लेबल करना अत्यधिक सरल है। दैनिक बलिदान तामिद, मे ओलाह आमतौर पर गलत नाम वाली होम बलि और मिंचा अनाज की भेंट शामिल है।
अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लगभग सभी बाइबल युग की संस्कृतियों ने देवताओं को बलि दी और उस व्यवस्था के हिस्से के रूप में उन्होंने देवताओं को भोजन की बलि दी। इन रहस्यमय धर्म संस्कृतियों के दिमाग और उद्देश्यों में भोजन का प्राथमिक उद्देश्य उन देवताओं को खिलाना था। इस प्रकार वे आम तौर पर 3 दैनिक बलि, अनिवार्य रूप से नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना चढ़ाते थे। यह इब्रानी दृष्टिकोण नहीं था, वास्तव में यह लगभग विपरीत दृष्टिकोण था, क्योंकि इसराइलियों का उद्देश्य जानवरों और अनाज भोजन को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जीविका के रूप में नहीं, बल्कि इस बात की स्वीकृति के रूप में चढ़ाना था कि वह उन्हें यह भोजन प्रदान करता है। अब पद 7 में हमें यहोवा को चढ़ाए जाने वाले अर्घ्य के बारे में एक दिलचस्प निर्देश मिलता है। बहुत बार शायद शराब की लत उपयोगकर्ता और परिवार के लिए कितनी गंभीर रूप से विनाशकारी हो सकती है, इस आधुनिक समझ के कारण चर्च इस बात से इनकार करता है कि शराब, जिसमें शराब होती है, को इन पवित्र अनुष्ठानों के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया था। इसलिए बाइबल की शराब को आमतौर पर केवल अंगूर का रस कहा जाता है। यह बिल्कुल सच नहीं है। याइन शराब के लिए मानक इब्रानी शब्द है। शराब ठीक वैसे ही जैसे हम शराब के बारे में सोचते हैं, याइन अपेक्षाकृत कम अल्कोहल वाली शराब थी, जिसका इस्तेमाल न केवल कुछ अनुष्ठानों के लिए बल्कि हर दिन पीने के लिए भी किया जाता था, खासकर भोजन के साथ। हालांकि शेखर नामक एक मजबूत पेय था और इसका इस्तेमाल आमतौर पर नशे में धुत होने या पूरी तरह से नशे में होने के लिए किया जाता था, लेकिन वास्तव में शेखर का कुछ ईश्वर अधिकृत अनुष्ठान उपयोग था। वास्तव में इब्रानी शब्द शेखर का अक्सर सही ढंग से हमारे बाइबलों में मजबूत पेय के रूप में अनुवाद किया जाता है। ये कई तरह के मादक पेय हो सकते हैं जिनमें अल्कोहल का स्तर याइन, टेबल वाइन से काफी अधिक था। कभी कभी शेखर अनाज से बनी एक मजबूत बियर या शराब होती थी। बाइबल शब्द पुरानी शराब का तात्पर्य किण्वित अंगूरों से है, शराब जिसे सामान्य से परे किण्वित होने के लिए छोड़ दिया गया है, इसलिए यह नियमित शराब से पुरानी थी और इसलिए इसमें अधिक अल्कोहल होता है। पुरानी शराब शेखर है।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रतिदिन 2 बार तामिद के साथ दिया जाने वाला अर्घ्य यहां शेखर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, न केवल शराब बल्कि मजबूत शराब भी। मुझे पता है कि यह शराब थी और बियर नहीं, क्योंकि कानून में कहीं भी अंगूर के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल इस तरह के खिण्वित अर्घ्य के स्रोत के रूप में नहीं किया गया है, क्योंकि खुशी के आवश्यक प्रतीकवाद के कारण। शराब पीने का एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि अक्सर कहा जाता है कि पुजारी मंदिर में अपनी आधिकारिक ड्यूटी शुरू करने से ठीक पहले याइन, टेबल वाइन नहीं पीते थे। वास्तव में उन्हें टेबल वाइन पीने से मना नहीं किया गया था, उन्हें उस समय अवधि के दौरान शेखर अधिक नशीला पेय पीने से मना किया गया था। वे इब्रानी आम आदमी जिन्होंने नाजरीत की शपथ ली है, वे याइन या शेखर नहीं पी सकते। इसलिए एक नाजरीत के लिए यह शराब पीने की तुलना में पूरी तरह से मादक पेय का सेवन करने से प्रतिबंधित होने का मामला है। पद 9 में सप्त के दिन की बलि का विवरण दिया गया है, 2 वर्षीय मेढ़े और साथ में अन्न बलि। यह दैनिक तामित के अतिरिक्त है और किसी भी अन्य अवसर के अतिरिक्त है जो इस विशेष सप्त पर पड़ता है। पद 11 में नए चांद के अवसर की शुरुआत होती है, जो इसराइलियों के लिए एक महीने के अंत और अगले महीने की शुरुआत का प्रतीक था। यह इसराइल के सभी परिवारों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मासिक त्यौहार था और इसका महत्व बड़ी गिनती में बलि के मेढ़ों से देखा जा सकता है जिन्हें चढ़ाया जाता था। साथ ये बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों की गिनती के बराबर था। बलिदान की भेंट शराब है, नियमित शराब है याइन। यह एक ऐसी बात को इंगित करने का अच्छा समय होगा जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि रब्बी बारूक और मैंने दोनों ने व्याख्यान दिया है, यरूशलेम में आने वाले नए मंदिर के आगमन के साथ साथ बलिदान की पूजा फिर से शुरू होगी। नवीनीकृत प्रणाली के लिए बलिदान प्रोटोकॉल को मुख्य रूप से यहेजकेल पुस्तक में कहा गया है और आम तौर पर इब्रानियों और ईसाइयों द्वारा अंत समय और सहस्राब्दी राज्य समय सीमा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए आम तौर पर पूछा जाने वाला सवाल यह है, क्या नवीनीकृत बलिदान, जो हमारे भविष्य में बहुत दूर नहीं है, एक अच्छी बात है या बुरी बात है? इस तथ्य को देखते हुए कि यह जकेल प्रणाली मसीहा की वापसी से ठीक पहले शुरू होती है और जाहिर तौर पर उसके नए राज्य में जारी रहती है, जिसे ईसाई सहस्राब्दी राज्य कहते हैं। हम पहले ही कुछ हद तक इस पर चर्चा कर चुके हैं और मैं आम तौर पर रब्बी बारूक से सहमत हूं कि ऐसा लगता है कि इस नवीनीकृत बलिदान प्रणाली को ईश्वर द्वारा एक अच्छी और आवश्यक चीज के रूप में देखा जाएगा। अब एक मुद्दा जो हमें यहेजकेल के भविष्य के बलिदान प्रोटोकॉल के साथ मिलेगा वह यह है कि यह तोरह में पाए जाने वाले प्रोटोकॉल से कुछ हद तक संशोधित है, जैसा कि कोई भी उचित रूप से उम्मीद कर सकता है, क्योंकि तोरह में हमें जो निर्देश दिया जा रहा है वह ईसा मसीह से पहले का है, जबकि यहेजकेल में हमें जो निर्देश दिया जा रहा है वह केवल यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद ही नहीं बल्कि उनकी वापसी पर भी होता है। इसलिए परिस्थितियां विशेष रूप से आध्यात्मिक पक्ष में बहुत अलग है। बलिदान प्रणाली के कुछ तत्वों के विवरण में यह बदलाव कुछ ऐसा है जिसे हम पहले ही तोरह में देख चुके हैं। जबकि जंगल में शराब और बैल और अनाज जैसी चीजें मिलना मुश्किल होगा, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में। हालांकि एक बार जब इसराइल कनान की भूमि में प्रवेश कर गया और वहां बस गया तो ये चीजें आसानी से उपलब्ध होंगी। इसलिए परमेश्वर ने निर्गमन और कुछ हद तक लैव्य व्यवस्था में विजयपूर्व बलिदान की आवश्यकताओं को निर्धारित किया है, जबकि गिनती ज्यादातर इसराइल द्वारा कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद के समय से संबंधित है। भविष्य की यहेजकेल प्रणाली और मूसा के युग की तोरह प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जबकि पुजारी को बलिदान प्रोटोकॉल के तौर संस्करण में दैनिक तामिद, सुबह और शाम की होम बलि की आपूर्ति करनी है, यह उपासक हैं जो यहेजकेल संस्करण में तामिद प्रदान करते हैं। और जबकि गिनती 28 की आयत 15 में हम देखते हैं कि नए चांद के उत्सव के साथ साथ अन्य सभी विशेष अवसरों, सप्त के दिन को छोड़कर, के साथ एक हत्तात, एक शुद्धिकरण बलिदान होना है। हम पाते हैं कि इन अवसरों के लिए यहेजकेल की भविष्य की बलिदान प्रक्रियाओं में हत्तात बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। हम तोरह में वर्णित बलिदान प्रणाली और यहेजकेल में वर्णित प्रणाली के बीच के अंतरों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही गहन प्रयास है जो हमें हफ्तों तक उलझाए रख सकता है। हालांकि जब आप इन अंतरों को देखते हैं तो कोई अनुमान लगा सकता है कि उन अंतरों में महत्व है। कुछ विद्वान बस इतना कहते हैं कि अंतर केवल त्रुटि और असंगति है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका संबंध यहेजकेल अंत समय 1000 साल के राज्य के समय में पुजारी के बहुत कम महत्व और तोरह में पुजारी के बहुत अधिक और केंद्रीय महत्व से है। मुझे लगता है कि इसका संबंध इस तथ्य से भी है कि मसीहा के आगमन के बाद से उनके रक्त के अलावा किसी अतिरिक्त प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है और न ही यह संभव है। तोरह बलिदान प्रणाली में पुजारियों का मुख्य काम इज़राइल के लिए प्रायश्चित प्राप्त करने के साधन के रूप में बलिदान करना था। इसलिए जबकि तोरह में और यीशुआ की मृत्यु और पुनरुत्थान तक पुजारियों की भूमिका लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए आवश्यक अपरिहार्य अनुष्ठान थी, पुजारी की यह केल शैली शायद ईश्वर द्वारा किए गए कार्यों की स्मृति की एक सतत सेवा है, विशेष रूप से उद्धार लाने के लिए यीशु मसीह के बलिदान के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहेजकेल और तोरह के बीच बलिदान से संबंधित अंतर के बारे में यह अंतिम छोटी सी बात मेरी राय है और मैं इसे आपके सामने निर्विवाद तथ्य के रूप में नहीं रखता हूं।
पद 16 में आगे फसह और अखमीरी रोटी की बलि के बारे में बताया गया है। फसह और अखमीरी रोटी के पर्व का मामला खास तौर पर गैर यहूदियों के लिए काफी उलझन भरा हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। यह कि वे एक हो गए और अविभाज्य हो गए, यह तोरह में पहले से ही निर्धारित नहीं था और कुछ साल बाद व्यावहारिकता और परंपरा के कारण ऐसा हो गया। फसह की शुरुआत एक दिन के उत्सव के रूप में हुई थी, मातजाह या अखमीरी रोटी का पर्व फसह के अगले दिन से शुरू होता है और यह लगातार 7 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। चूंकि पेसाच फसह को अंततः व्यवस्था विवरण के समय तक मातजाह के साथ जोड़ दिया गया था, इसलिए इसे आज अक्सर 8 दिवसीय फसह का त्यौहार या वैकल्पिक रूप से 8 दिवसीय मातजाह का त्यौहार कहा जाता है। फसह और अखमीरी रोटी का पर्व एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द बन गए हैं, हालांकि यह तकनीकी और बाइबल के अनुसार गलत है। फसह के मूल अध्यादेशों और अलग से अखमीरी रोटी के पर्व में फसह निसान महीने की 14 तारीख को मनाया जाना था और मतजाह के 7 दिन निसान की 15 तारीख को शुरू होने थे और निसान की 21 तारीख को समाप्त होने थे।
मूल रूप से फसह एक तरह का निजी पारिवारिक अनुष्ठान था। फसह के मेमने या बेहतर मेढ़े को व्यक्तिगत परिवारों द्वारा अपने घरों में मारा, काटा और खाया जाना था। पुजारी के लिए अनुष्ठान के किसी भी भाग को पूरा करना आवश्यक नहीं था। वास्तव में याद रखें कि फसह की आवश्यकताओं में से एक यह है कि मेढ़े को आग पर भूना जाता है, क्योंकि इसे पकाने का यही एकमात्र स्वीकृत तरीका है। आग पर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि यह वेदी पर होम बलि का अनुकरण कर रहा था, लेकिन जबकि मंदिर की वेदी पर चढ़ाए जाने वाले अधिकांश प्रसाद पूरी तरह से आग में जला दिए जाते थे, इस निजी घर में फसह के मेढ़े की बलि को आग में पकाया जाता था और इसराइलियों के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान दें कि मैंने फसह के संबंध में निजी घरेलू अनुष्ठान कहा। जैसा कि हम अध्याय 28 और जल्द ही 29 में पढ़ रहे हैं, वे सार्वजनिक बलिदान हैं, बलिदान जो मंदिर में किए जाते हैं और पुजारियों द्वारा किए जाते हैं। दूसरी ओर मातजाह का पर्व, जैसा कि हम यहां गिनती में देखते हैं, पुजारी द्वारा मंदिर में किए जाने वाले आधिकारिक सार्वजनिक बलिदान का दर्जा रखता है। इसका मतलब यह था कि लोगों को इसका पालन करने के लिए यरूशलेम या पहले के समय में तंबू के स्थान तक की यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी पड़ती थी। अब चूंकि दोनों पर्व एक हो गए थे, इसलिए लोग अपने पास का मेमनों को पुजारी द्वारा बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में ले आए, क्योंकि उन्हें वैसे भी मतजाह के पर्व के लिए वहां होना था। उन्होंने एक तरह से एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार दिया। यह भी उस विचार से अलग नहीं है कि सैकड़ों वर्षों से ईसाई, गैर यहूदी, आम तौर पर चर्च में शादी करना पसंद करते हैं। ऐसा करने के लिए बाइबल में कोई आदेश नहीं है, लेकिन हमारे सोचने के तरीके से यह चर्च की इमारत में शादी को और अधिक पवित्र और आध्यात्मिक तत्व जोड़ता है। पास का मेमने के साथ भी यही विचार था। यह आवश्यक नहीं है कि इसे पुजारी की देखरेख में मारा जाए, लेकिन ऐसा करने से इस अवसर को कुछ अतिरिक्त पवित्रता मिलती है। परिणाम स्वरूप मेमनों को भूनने के लिए सार्वजनिक भट्टियां अंततः पूरे यरूशलेम में रखी गई, ताकि जो लोग अपने मेमनों को वहां लाए वे उन्हें भून सकें और मंदिर में अनुष्ठान पूर्वक मारे जाने के बाद उन्हें खा सकें, फिर से तोरह की आवश्यकता नहीं बल्कि केवल एक विनम्रता। यह भी ध्यान दें कि अखमीरी रोटी के पर्व का महत्व मज़ाह के प्रत्येक 7 दिन में समान मात्रा में अतिरिक्त बलिदान की आवश्यकता से रेखांकित होता है। पद 26 में सप्ताहों के पर्व के लिए बलिदान की आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। इस अवसर को आज इब्रानियों के बीच शवोत या ईसाइयों के बीच पिंतेकुस्त एक यूनानी शब्द कहा जाता है। यह त्यौहार मात्ज़ाह के त्यौहार के 7 सप्ताह और 1 दिन 50 दिन बाद आता है। चूंकि ये सभी त्यौहार कृषि आधारित हैं इसलिए शावोत जौ की फसल के समापन पर मनाया जाता था जो गेहूं की फसल की शुरुआत भी थी। ये एक ग्रीष्मकालीन त्यौहार था जो एक सार्वजनिक त्यौहार भी था जिसका अर्थ है कि इसके लिए मंदिर की यात्रा की आवश्यकता होती थी जिसका अर्थ है कि ऐसे बलिदान थे पुजारियों द्वारा ही इसे संपन्न किया जाना था। दिलचस्प बात यह है कि यह उन उदाहरणों में से एक है जहां मंदिर की तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता को अंतिम समय और सहस्राब्दी राज्य काल के लिए बलिदान के यहेजकेल प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। संभवतः उस युग के लिए पुजारियों की भूमिका और उद्देश्य में कमी और इस वास्तविकता के कारण कि मसीहा पृथ्वी पर मौजूद है। और जिस प्रकार नवचंद्र उत्सवों और मत्ज़ाह पर्व के प्रत्येक दिन शवोत के लिए भी उतनी ही गिनती में बलिदान की आवश्यकता थी।
आइए अब गिनती अध्याय 29 पर चलते हैं।
गिनती अध्याय 29 पूरा पढ़ें। ठीक है, हम इस अध्याय के केवल मुख्य अंशों पर ही चर्चा करेंगे क्योंकि विभिन्न प्रकार के बलिदानों के बारे में सभी विवरण हम पहले ही लैव्य व्यवस्था में विस्तार से बता चुके हैं। मैं मान रहा हूं कि आप इनमें से अधिकांश को पहले से ही जानते हैं और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप वापस जाकर लैव्य व्यवस्था सीडी का अध्ययन कर सकते हैं। यह अध्याय सार्वजनिक बलिदानों के पवित्र कैलेंडर को जारी रखता है लेकिन अब हम वर्ष के पवित्र 7वें महीने में प्रवेश करते हैं। मूल रूप से हमारे पास वर्ष के पहले महीने में 3 पवित्र पर्व, वर्ष के 7वें महीने में 3 पवित्र पर्व और 1 से 7वें महीने के बीच में 1 पवित्र पर्व होता है। और अध्याय 29 की पहली आयत में प्रभु ने निर्देश दिया है कि 7वें महीने का पहला दिन एक विशेष अवसर होना चाहिए, एक ऐसा दिन जब नरसिंगा बजाया जाता है। इब्रानी में इसे योम तेरुआ, नरसिंगा बजाने का दिन कहा गया है, इसलिए इसे नरसिंगों का पर्व कहा जाता है। इस विशेष अवसर का क्या अर्थ है यह समझने की कुंजी का एक हिस्सा गिनती 7 के महत्व में निहित है। इस बारे में सोचें कि सप्ताह कैसे संचालित होता है। सप्ताह का पहला दिन स्पष्ट रूप से प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत करता है और यह कुछ खास नहीं है। इस दिन के लिए कोई विशेष अनुष्ठान निर्धारित नहीं है लेकिन 7वां दिन बहुत खास है क्योंकि यह सप्त का दिन है जो प्रभु के अनुसार विशेष रूप से पवित्र दिन है। वैसे 7वां महीना सप्त के महीने जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि 7वां महीना पूरे आराम का महीना है लेकिन यह धार्मिक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से चंद्रमा का 7वां चक्र है, यह महीनों की शुरुआत से 7वां महीना है और इस तरह यह विशेष रूप से पवित्र महीना है। इसीलिए यह परमेश्वर के स्थापित पैटर्न के अनुसार ही है कि किसी भी चीज का 7वां दिन विशेष महत्व रखता है।
7वें महीने के इस पहले दिन को रोश हशनाह भी कहा जाता है जिसका मतलब है साल का सिर। यह यहूदी नव वर्ष है लेकिन चूंकि यह नए महीने या अमावस्या का पहला दिन भी है इसलिए इसका अतिरिक्त महत्व भी है। सबसे प्राचीन बेबीलोन कैलेंडर से संकेत मिलता है कि वर्ष का 7वां महीना आमतौर पर कृषि वर्ष का पहला महीना होता है और इससे भी अधिक 50 वर्षीय जयंती वर्ष जिसे ईश्वर ने निर्धारित किया है रोश हशनाह से शुरू होता है।
क्योंकि यह एक विशेष रूप से पवित्र दिन है इसलिए इसमें बलिदान की अपनी समर्पित श्रृंखला होती है जो सामान्य अमावस्या बलिदानों के साथ जोड़ दी जाती है।
10 दिन बाद 7वें महीने के 10वें दिन पद 7 में एक और पवित्र अवसर की बात कही गई है, एक और ईश्वर द्वारा निर्धारित बाइबल पर्व। ये शायद 7 पर्वों में से सबसे शांत और फिर भी आनंदमय पर्व है, योम किप्पुर, प्रायश्चित का दिन। यह प्रतिवर्ष एक दिन है जब यहोवा ने महायाजक को पवित्र स्थान में, पवित्रतम स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, और उस प्रवेश का उद्देश्य दया के आसन, वाचा के संदूक के ढक्कन और मंदिर के अन्य क्षेत्रों पर छिढकने के लिए रक्त लाना था, ताकि इसे साफ किया जा सके और इसे उस अशुद्धता से शुद्ध किया जा सके जो परमेश्वर के निवास स्थान को एक साल के मानवीय संपर्क से मिली है। उत्सव मंदिर तक ही सीमित है और केवल उच्च पुजारी द्वारा ही किया जाता है। आम इब्रानी इस दिन मंदिर नहीं जाते हैं।
योम किप्पुर से पहले कई दिनों तक लोग उपवास, प्रार्थना और यहोवा के सामने अपने पापों पर चिंतन करते हैं, लेकिन योम किप्पुर पर प्रायश्चित पूरा हो जाता है, लोगों को क्षमा कर दिया जाता है और वे अपने पापों के बोझ से मुक्त होकर नए वर्ष में प्रवेश कर सकते हैं।
यह आत्म त्याग का समय है। न खाना, न पीना, न काम से कोई लाभ, यहां तक कि कोई यौन गतिविधि भी नहीं। सातवें महीने के पहले दिन रोश हशनाह, यहूदी नववर्ष, और सातवें महीने के दसवें दिन योम किप्पुर को जोड़ने वाले 10 दिनों को उच्च पवित्र दिन कहा जाता है। और फिर भी सातवें महीने में इन दोनों बेहद मार्मिक और महत्वपूर्ण पर्वों के साथ एक और पर्व जल्द ही आने वाला है, सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व।
यह वही पर्व है जिसकी शुरुआत पद 12 में बताई गई है, सुक्कोत का पर्व, जिसे झोपड़ियों का पर्व या झोपड़ियों का पर्व भी कहा जाता है। यह तीर्थ यात्रा पर्वों में से तीसरा और आखिरी पर्व है, जिसके तहत एक पुरुष जो जिम्मेदारी की उम्र का है को मंदिर में जाकर उत्सव मनाना और बलिदान करना चाहिए। कृषि पर आधारित यह उत्सव कृषि वर्ष के अंत का प्रतीक है। जब खेतों की फसल के अंतिम टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता था तथा उसके बाद रोपण का इंतजार किया जाता था तथा फिर बारिश के बाद यह चक्र पुनः शुरू हो जाता था। इस पर्व के लिए आवश्यक बलिदान की मात्रा और प्रकार हमें बताते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। सुक्कोत के इन 8 दिनों के दौरान मज्जाह के पर्व के दिनों की तुलना में 5 गुना अधिक बैल और 2 गुना अधिक मेमने और मेरहे बलि के लिए चढ़ाए जाते हैं। सतह पर यह त्योहार पिछले साल के लिए उन्हें बनाए रखने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के बारे में है, लेकिन इसके नीचे यह अनाज के अंतिम संग्रह के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के बारे में है जिन्होंने अपना दिल यीशु को दिया है और अपना भरोसा सर्वशक्तिमान ईश्वर पर दिया है। अमेरिका आए तीर्थयात्रियों ने इसे पहचाना और इसके बाद हमारे धन्यवादी अवकाश को मॉडल बनाया। हाँ, हमारा धन्यवादी पूरी तरह से एक धार्मिक अवकाश है, लेकिन कोई इसे अब कभी नहीं जान पाएगा, है ना?
यद्यपि हम कहते हैं कि सुक्कोत 8 दिन का त्योहार है, तकनीकी रूप से यह वास्तव में केवल 7 दिन का है। यह झोपड़ियों के पर्व के 7 दिन है, जिसके तुरंत बाद एक अतिरिक्त सप्त दिवस आता है और यह धार्मिक समारोह में एकत्र होने और संगति का दिन भी है।
इस पर्व में अनुष्ठान बलि का एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। यह पहले दिन 13 बैलों, सभी जानवरों में सबसे महंगा, की बलि देकर शुरू होता है और फिर 7 दिनों की अवधि में हर दिन 1 बैल की बलि कम हो जाती है। इसलिए सुक्कोत के पहले दिन 13 बैलों की बलि दी जाती है, दूसरे दिन 12 बैलों की बलि दी जाती है और सुक्कोत के 7वें दिन तक 7 बैलों की बलि दी जाती है। अन्य बलि जानवरों और अनाज और शराब की सभी मात्राएं पूरे समय स्थिर रहती हैं। 13 बैल क्यों? आमतौर पर जब हम पूरे इसराइल की ओर से बलि चढ़ाते हैं तो गिनती 12 होती है। मेरा मानना है कि 13 का मतलब इसराइल के 12 गोत्रों के साथ साथ पुरोहिती गोत्र लेवी का गोत्र भी है। याद रखें कि लेवी के गोत्र को प्रभु ने अपनी विशेष सेवा के लिए इसराइल से अलग कर दिया था और उन्हें इसराइल में नहीं गिना जाना था, लेकिन यहां हम लेवी को इसराइल के साथ फिर से मिलाते हुए देखते हैं, जो संभवतः सहस्राब्दी राज्य में घटित होने वाला है। और जाहिर है, जब आप पूरे 7 दिन की अवधि में बलि दिए गए बैलों की गिनती जोड़ते हैं तो ये 70 आता है, 7 × 10, फिर से वही गिनती 7 है। रब्बियों का कहना है कि 70 दुनिया के सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है? रब्बी परंपरा कहती है
कि सभी पर्वों में सबसे भव्य, सभी पर्वों में से अंतिम, इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है जो सामान्य रूप से दुनिया को शामिल करता है, न कि केवल इब्रानियों को। भविष्यवाणी के दृष्टिकोण से झोपड़ियों का पर्व दिनों के अंत में विश्वासियों के अंतिम एकत्रीकरण के समय को दर्शाता है। यह वह समय है जब प्रभु अपने सभी लोगों को इकट्ठा करता है और शेष को नष्ट कर देता है, और यह मसीहा के 1000 साल के शासन में प्रवेश है, जिसे हम आम तौर पर सहस्राब्दी राज्य कहते हैं। प्रभु के निर्धारित बलिदानों और उनके निर्धारित बाइबल पर्वों को समझना और जो कुछ हुआ है और निकट भविष्य में होने वाला है उसे समझना हमारे लिए बहुत अधिक समझ में आने वाला है। अगले सप्ताह हम गिनती अध्याय 30 शुरू करेंगे।